वासुदेवाय संत सम्मेलन 36वां आपके नगर रोहतक में हो रहा है। ऐसे संतों को कोटि प्रणाम प्रणाम। पूज्य परम पूज्य संत स्वामी जी महाराज, सतदेवानंद जी महाराज, मंच पे आसीन महात्मा संत साधकों और आप सब भक्तों को हरे कृष्ण। संत सम्मेलन संतों का सम्यक रूप से मिलना काय के लिए, क्यों? संतों का सम्यक रूप से मिलना इसलिए कि जो कुछ भी तप से, जप से, ध्यान से, योग से उन्होंने जीवन में अर्जित किया, जीवन का अनुभव जो उनका है, वो जिज्ञासुओं को प्रेम पूर्वक श्रद्धा सहित सिखाने के लिए एक अवसर मिलता है। कोई संत जप निष्ठ होता है तो कोई ध्यान निष्ठ होता है, कोई योग निष्ठ होता है, तप निष्ठ होता है, लेकिन सबका अनुभव एक ही समय, कि संसार में सब एक जगह से नहीं आए हैं, एक जूनी से नहीं आए हैं, कोई देव जूनी से आए हैं, कोई बहुत ऊंचे, एक भगवत गीता में छठे अध्याय में जहां योग का वर्णन है वहां एक प्रसंग आता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि योग का अभ्यास तो शुरू कर दिया लेकिन पूरा नहीं किया, जिंदगी खत्म हो गई तो उसका क्या होगा? शुरुआत तो की लेकिन पूरा नहीं किया तो क्या होगा? ऐसे तो नहीं है उसका सब कुछ समाप्त हो गया, न संसार मिला और संसार का सुख मिला और न राम मिला न दाम मिला, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आप ये 5 दिन 6 दिन यहां सम्मेलन में आते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लेकिन जन्म सफल हो जाए ये तो कोई साधन आगे कौन चलाता है कौन चलाएगा पता नहीं, लेकिन ये 4 दिन जो आप आते हैं इसका तो फायदा मिलना चाहिए ना। संसार में ऐसे नहीं होता, एक आदमी कॉलेज में पढ़ना चाहे, 5 साल की पढ़ाई होती है डॉक्टरी की, 3 साल के बाद छोड़ के आ जाए वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो 3 साल गए बेकार गए, ऐसे ही होता है। स्कूल तो पढ़ने गया, 10 साल खराब किए लेकिन 10वें का परीक्षा दिया नहीं तो किसी काम का नहीं है, 10वें का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सब पढ़ाई गई। लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसे नहीं है, आध्यात्मिकता में ऐसे नहीं है। स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, अल्प मतलब बहुत थोड़ा सा भी प्रयास अगर इस साधु संघ में सत्संग में अगर कभी कर लिया, अचानक प्रेम से आके बैठ गए और सुन लिया और जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन भी आ गया, त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े भय से बचा लेगा। जब संसार में कोई संकट आएगा तब ये सत्कर्म आपका उस वक्त आपकी रक्षा करे। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए अर्जुन को कहते हैं न इस दुनिया में न मउत्र और न उस दुनिया में कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन को भगवान तात कहते हैं, तात अपने बच्चे को कहते हैं, प्रेम कर से उसको कहते हैं, पीठ थपथपा के वो कहते हैं बेटा अर्जुन मेरा प्रिय, जो भला काम करेगा उसका दुर्गति कैसे होगी? इस दुनिया में होगी ना उस दुनिया में होगी? थोड़ा सा भी धर्म के ऊपर चलने वाला हमेशा के लिए वो पुण्य इकट्ठा कर लेता है, वो पुण्य कभी खराब नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, कभी कहीं बेकार नहीं जाता है। तब भगवान कहते हैं आगे, ऐसा व्यक्ति जो पूरा नहीं कर पाया है, जो पूरा नहीं कर पाया है साधन, कोई बात नहीं, क्या होगा उसको? बहुत समय तक, दीर्घ समय तक क्यों नहीं साधन पूरा होता है? इसका कारण पहले सुन लीजिए, क्योंकि भगवान के तरफ जाने में ऐसा है जैसे नदी है ना, नदी नीचे बहती है ना, जहां नदी के पानी का बहाव है, जैसे आप जाएंगे गंगा में हरिद्वार तो जो दीप रखते हैं नीचे बह जाते, जो रखेंगे नीचे चला जाएगा, आदमी जाएगा तो उसको भी ले जाएगी, लेकिन उल्टा करके कोई गंगों की तरफ जा सकता है क्या? कितना मुश्किल है ऊपर जाना। नदी के जो है मुखालिफ सीमित में जाना बहुत मुश्किल है, और भगवान की तरफ जाना तो ऐसा जाना है जिसमें हमको उल्टी सीमित में चलना पड़ता है। दुनिया इधर जाते हैं और हम उधर जाते हैं, यह बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, वो रास्ता दूसरा है। लेकिन उधर जाता कौन है? जो बहुत वीर पुरुष होता है, बलवान होता है, लेकिन सीधा नहीं जा सकता है। इसलिए क्या होता है, जगह जगह के ऊपर लंगर लगाने पड़ते हैं कि उसको पकड़ के थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। देखा है हरिद्वार में नहाते हैं तो वहां जंजीरें लगी हुई हैं, हाँ, जंजीर को पकड़ के नहाओगे कहीं चले ना जाओ, ऐसे है ना? क्यों ऐसे क्यों किया हुआ कि नीचे बह ना जाओ? ये साधु संत महात्मा ये बनाते हैं आश्रम, ये वो जंजीरें और लंगर हैं जो आपको दुनिया के इस बहाव में बहने चले जाए उससे बचाने के लिए, कि कहीं बहने चले जाओ। जो सावधान आदमी है उसको पकड़ लेता है। तो साधुओं का संग करना, संतों का संग करना, किसी मठ मंदिर मां के साथ अपने जीवन को बिल्कुल बनाए रखना, ये उस लंगर को पकड़ने के बराबर है जो आपको बहने से बचा देगा। नहीं तो आदमी बह जाएगा, कई जन्मों से नीचे बहते जा रहे हैं। इस दुनिया में नीचे गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, कई जन्मों से गिरते हुए आ रहे हैं। छोटी चीज करना, अपराध हो जाना, ये तो कई कब से करते हुए आ रहे हैं, उससे बचना मुश्किल है। उससे बचने के लिए साधन सत्संग है। कभी कहते हैं घर में तो फ्रिज रख दिया है क्योंकि सब्जी खराब ना हो जाए, 7 दिन के लिए उसमें पड़ी रहेगी अच्छी, ऐसा मशीन बना के हाँ, और बड़ा सा अनाज को रखने का लिए तो बड़ा एक पीपल आके घर में रखा है कि 12 महीने अनाज ले उसके अंदर कोई डाल देंगे दवाई तो अनाज खराब नहीं होगा, अन्न खराब नहीं होगा। अन्न खराब नहीं हो इसके लिए भी कोई दवाई है, सब्जी खराब नहीं हो ले इसके लिए भी फ्रिज है। अरे आदमी का मन खराब नहीं हो इसके लिए कोई है दुनिया के अंदर बनी हुई मशीन? आदमी का मन खराब ना हो, आदमी खराब ना हो, आदमी बुराई से बच जाए, बिगड़ने से बच जाए, उसके लिए ये साधु का सम्मेलन और सत्संग है, ये वो बहुत बड़ा ऐसा यंत्र है जिसके अंदर जो आके बैठ जाता है वो अपने आप स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं, बात हम कह रहे हैं क्यों आदमी साधन पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए कि बहुत जन्मों से हमारी संसार में भोग की वासनाएं रही होती है। आगे जाते हैं तो नीचे की तरफ वो खींच लेते, भोग वासनाओं की वजह से लोग नीचे गिरता है और कोई कारण गिरने का नहीं है। पाप होता क्यों है, ये दूसरा एक प्रश्न अर्जुन ने पूछा है भगवान से भगवत गीता में। अथ के न प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन वार्षणे न बलादेव नियोजित। अरे भगवान वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण, हम पाप नहीं करना चाहते, कौन हमसे जबरदस्ती पाप करा रहा है? ऐसे लगता है कि कोई खींच के हमसे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। नियोजिति शब्द लिखा है, नियोजिति, नियोजिति का मतलब है नाक में रस्सी डाल के जैसे बेल को पकड़ा होता है ना, कोई बेल खेत जोतना चाहेगा क्या? कोई बेल बैलगाड़ी खींचना नहीं चाहता है, कौन कंधे के ऊपर बैलगाड़ी खींचेगा, लेकिन उसके नाक में रस्सी डाल के उसको जुआ के नीचे खड़ा करके और खेत को जोतवाते हैं। तो जैसे बेल खेत जोतना नहीं चाहता है, ऐसे पाप करना, तो आत्मा तो पवित्र है, शुद्ध है, पर तो कहां से पाप में लिप्त होगा, तो नहीं हो सकता है, वो तो शुद्ध पवित्र सच्चिदानंद है, तो कौन पाप कराता है? तो ये प्रश्न लोग सब पूछते फिर तो, अरे भाई इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की इच्छा से, तो पाप भी तो भगवान ही कराता होगा, ये लोग कह के जान छुड़ा देते। पाप कौन कराता है? आत्मा करती होगी, शरीर थोड़ी अपने आप चलता है, या आत्मा करती है या परमात्मा पाप कराता होगा। लेकिन भगवत गीता को अगर बहुत अच्छी तरीके से बारीक बीनी से देखेंगे तो 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, नादते कश्चित पापम न चैव सुकृतिम विभु। मैं किसी के पाप का जिम्मेवार नहीं हूं और नहीं पुण्य का जिम्मेवार हूं, किसी का पाप का जिम्मेवार मैं नहीं, नादते कश्चित पापम, किसी के पाप कोई करता है उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। तो कोई कहेगा क्या पाप का जिम्मेवार नहीं है, तो भगवान क्या आप पुण्य ही केवल लेते हैं कि आपको पुण्य चाहिए? जैसे हम लोग, हमारी भाषा डॉक्टरी की ये होती है कि कोई ठीक हो जाता है तो हम कहते हैं कैसे हमारा इलाज कैसे लगा, कमाल का है ना, ठीक हो गए ना। कोई मर गया तो हम कहेंगे भगवान ने मार दिया, हमने को नहीं मारा, मारा भगवान ने, ठीक हमने किया। दुनिया में ये परिभाषा चलती है, बुराई हो गई तो किसी और ने की, अच्छाई की तो हमने की। तो भगवान से ऐसे कहते हैं, ऐसे तो नहीं है कि आप पुण्य नहीं, भला ना देते कष्ट पाप, अरे पाप से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो भाई कौन ये कौन, कहां से पाप पुण्य आते हैं, कौन कर? तब भगवान कहते हैं अज्ञाने न मोहयंती ज्ञानम, अज्ञाने न ज्ञानम मोहयंती जंतवा। उसका ज्ञान अज्ञान से ढक गया है इसलिए मोहयंती जंतवा। सॉरी, ज्ञानेनावृतम अज्ञानम तेने मोहयंती जंतवा। जंतवा का अर्थ है जंतु, कहते हैं पशु को। अरे उसका सच्चा ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है और इस आवृत होने के कारण वो पशु की तरह, जैसे पशु या जंतवा का मतलब पशु, जैसे बेल को नाक में डाल के ले जाता है तो कौन ले जाता है? भगवान नहीं ले जाता, क्या आत्मा कराती? नहीं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकम सृजते प्रभु। न किसी को पाप कराता है आत्मा, न किसी का पाप का जो है कराने में प्रेरित करता है, न पाप करता है, न कर्म फल संयोगम, और कर्म के फल की भी दलाली आत्मा नहीं करता है कि इसका फल ये हो इसका फल नहीं, ये आत्मा का काम नहीं है। कौन करता है? स्वभावस्व प्रवर्तते, स्वभाव कराता है। कौन कराता है? स्वभाव कराता है। इसलिए भगवान का जवाब क्या है, पाप कौन कराता है? स्वभाव कराता है। स्वभाव कहां से बनता है? प्रकृति के गुणों से स्वभाव बनता है। तो अब भगवान क्या उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव।
अरे ये पाप तुम्हारा कहां से आता है? बोले तुम्हारे काम से, तुम्हारी इच्छाएं, दुनिया के अंदर जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, वो इच्छाएं तुम्हारे को प्रेरित करती है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध हो जाता है। कोई चीज आपको चाहिए और नहीं मिले तो आपको क्रोध होता है कि नहीं होता है? बच्चों को देखा है कभी टॉफी नहीं मिले तो भी झगड़ा कर लेंगे, खाने की चीज नहीं मिले तो झगड़ा कर ले, तो कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो झगड़ा कर लेते। काम सूक्ष्म में दिखता नहीं है, ख्वाहिश दिखती नहीं है, लेकिन पूरी नहीं होती है, क्रोध दिखता है उसके चेहरे के ऊपर, लगेगा तुम गुस्से में है क्या, घर से झगड़ा करके आया है क्या? उस आदमी को शक्ल करके दिखता है कि तुम घर से झगड़ा करके आया है क्या? तो क्रोध उसका देखने में आने वाला रूप है, काम दिखता नहीं है। तो काम एष, क्रोध एष, कहां से पैदा होता है? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होता है। पाप कौन कराता है? जब आदमी रजोगुण में प्रवृत्त होता है। और रजोगुण में क्या? लोभ होता है। रजोगुण में, रजोगुण में क्या है? लोभ। लोभ पाप का, पाप का बाप कौन है? बोला लोभ पाप का बाप है। तो भगवान के रास्ते पे चलते हुए ये काम और लोभ हमारे को रजोगुण में नीचे ले। बोला कैसे है ये? बोला महाअश्नो, अश्नो कहते हैं खाने को, और महाअश्नो कहते हैं जिसको कितना भी खिलाओ पेट न भरे उसको बोलते हैं महाअश्नो। कितना भी, कितनी इच्छाएं आपकी हों और 100 इच्छाएं पूरी हो तो फिर 101 हो जाएगी, 101 पूरी हो तो 105 हो जाएंगी। अब कभी कभी लोग कहते थे एक हजारी आदमी, ये हजारी मल है, 1000 रुपया होगा तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर 1000 होने के बाद 1000 से काम नहीं चला, अभी तो लख भी है, लखपति होना चाहिए, लख, अभी तो लख को कोई बात नहीं, अब तो लख आम आदमी के पास पड़ा है, अब करोड़पति, करोड़पति में कुछ नहीं है, अब अरबपति होना चाहिए। तो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इच्छा की पूर्ति संसार में नहीं होती। वेद में लिखा है और भागवत में लिखती है, एक संसार के किसी आदमी को सारे दुनिया का धन, पशु, स्त्रियां भोगने के लिए दो, तब भी बोलेगा मैं असंतुष्ट हूं, अभी तक मुझे कुछ और चाहिए। पूरी दुनिया किसी को दे दो तब भी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं काम को महाअश्नो, जिसका पेट कभी नहीं भरता। इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है, बड़े से बड़े पाप करा लेती है। काम, काम इतना बड़ा प्रबल होता है। आपने देखा है कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा होती है तो हमको सब दुनिया भूल जाती है और झगड़ा करके, हट करके भी अपनी बात को पूरा करा लेते हैं, क्रोध हो जाता है और यही हमसे पाप कराता है। महाअश्नो महापापमा, और ये बहुत बड़ा महान से महान पाप कराने में भी देर नहीं करता है। कौन? काम। इसलिए हम चलते हैं भक्ति के रास्ते के ऊपर, भगवान के रास्ते में योग का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे कुछ होते हैं और कुछ ऐसे हमारा स्वभाव होता है जो नीचे की तरफ हमें खींचता रहता है। किसको खींचता है नीचे की तरफ? असल में मन को खींचता है। ये सारी चीजें कहां जमा होती है? मन में, क्योंकि मन ही हमारा वो मशीन है जिसके अंदर सारी इच्छाएं इकट्ठी होती है, इसलिए सारा झगड़ा मन का है। इसलिए भगवत गीता कहती है मन ही तुम्हारा मित्र है अगर तुम्हारे वश में हो गया, और मन ही तुम्हारा शत्रु है अगर तुम्हारे वश में नहीं है। जैसे एक चाबी से ताला इधर घुमाओगे तो खुल जाएगा, इधर घुमाओगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे साधु के संग में आगे भगवान के रास्ते पे चले तो मन तुम्हारे वश में आ जाएगा, और संसार की तरफ चले गए और मंदिर तृप्ति में लग गए तो तुम्हारा मन बड़ा शत्रु है, दरवाजा बंद हो जाएगा। है मन का झगड़ा सारा। मन को एकाग्र करना यही सब साधनों का, सब साधनों का जो उद्देश्य है कि मन को एकाग्र करना। लेकिन मन एकाग्र हो कैसे? इतना बड़ा चंचल है, इतना बड़ा चंचल है। वो अर्जुन को जब भगवान ने कहा मन को वश में करने के लिए योग का, तो अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण। अरे भगवान श्री कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है। तो मानो भगवान कहते थे कोई बात नहीं, चंचल तो बच्चे भी होते हैं, घर में संभाल लेते हो कि नहीं होते? चंचल होते हैं ना बच्चे, इधर उधर उछल कूद करते हैं तो घर से थोड़ी निकाल देते, उसको संभाल भी लेते हो ना। तो अर्जुन बोला चंचल तो है लेकिन परमाथी भी है। कैसा है? चंचलम ही मन कृष्ण परमाथी बलवत दृढ़म। परमाथी है। परमाथी किसको कहते हैं? मंथन करते हैं ना, मंथन, वो मिक्सी के अंदर कोई चीज घूमती है ना, कभी नजर आती है कहां गई, कितनी तेज घूमती है पता नहीं लगता है। ये जो झूले में ऐसे घूमता है ना, ऊपर झूला घूमता है तो कुछ दिखता है? नहीं दिखता है ना। तो मन दिखता नहीं है, है कहां? अर्जुन बोलता है चंचल है, ऊपर कूदता नीचता तो मैं पकड़ लेता, लेकिन इतना तेज घूम रहा है, इतना तेज घूम रहा है, इतना तेज घूम रहा है, पता नहीं कहां चला गया। प्रमाथ ही है, बड़ा मंथन करता है। आप यहां बैठे हो, मन आपका कहां है? हमको मालूम नहीं कहां चला गया मन। या हम बैठे हुए तो मन हमारा वो बंबई घूम के आ जाएगा, कलकत्ते से होके आ जाएगा, और कहां कहां नहीं जाता है मन। तो मन परमात ही है, बोला परमात ही है तो बटन बंद कर दो ना, कहां घूमने क्यों जाते हो, तुम्हारा कहा नहीं जाता, रोक दो। बोला बलवद, बहुत शक्तिशाली है। अरे मन इतना बड़ा बलवान है कि बड़े से बड़े आदमी को छोटे से छोटे काम करने के लिए ऊपर मजबूर कर देता है, बड़े से बड़े आदमी को तुच्छ से तुच्छ, नीचे से नीचे गिरने वाला काम करा देता है। ऐसा मन बड़ा खतरनाक शत्रु है। बोला वो बलवान है, तुम अपना बल बढ़ा लो ना, तुम्हारा नाम महाबाहु है, तुम बड़ा शक्तिशाली हो ना, बना लो। बोला दृढ़म, ये बहुत हठीला है, ये जब हट करता है तो नहीं मानता है। तो मन के इतने विशेषण अर्जुन ने दिए। तब भगवान ने बड़े बुद्धिमानी से बड़े माता पिता को, गुरुजनों को, जब बच्चा ऐसे प्रश्न करता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, आप जो कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तब डांटने की जरूरत नहीं है। डांट कर तुम कैसे नहीं कर पाओगे, ऐसे कहना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, असंख्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चल, तुम सच कहते हो, इसमें कोई संशय नहीं है, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। अरे अर्जुन तो बड़ा खुश हो गया, कम से कम मेरी बात तो मान ली। पहले जो कहता है मुझसे नहीं हो सकता है, उसको कहना चाहिए तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत आसान काम नहीं है, ये मुश्किल है, बराबर सही है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो आदमी आपकी बात सुनेगा, लेकिन आप अगर तुम क्यों नहीं कर सकते, तो वो दरवाजा बंद करके आपकी बात सुनेगा ही नहीं। पहले उसको वो कहता है, वो असंशय महाबाहो, कोई संशय नहीं है, तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, मन को वश में करना बाकी बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान ने कह दिया महाबाहो, संबोधन क्या किया महाबाहो। जब महाबाहो कहा तो भगवान ने कहा, अरे इतना बड़े तुम शक्तिशाली हो, अपने शत्रु के ऊपर विजय करते हो, क्या मन के ऊपर विजय नहीं कर सकते क्या? अरे तुम नहीं करोगे तो और कौन कर सकता है? ये बहुत एक शैली है अपने शिष्य को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को बड़े से बड़े काम में प्रेरित करके और उत्साह के साथ परिपूर्ण करने के लिए बताने की शैली है ये भगवद गीता की। भगवान श्री कृष्ण गुरु के स्थान के ऊपर खड़े होकर ये शिक्षा दे रहे हैं, तुम महाबाहो, अरे तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे इतने वीर वंश के हो, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो, तुम संध्या वंदन नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे तुमसे पाठ नहीं होगा तो कौन करेगा? और जब तुम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो उत्साह बढ़ गया। तब बोला कैसे मन को वश में करूं? तब भगवान ने दो साधन बताए, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न तो गृह्यते। दो साधन है बेटा, एक अभ्यास करो और एक वैराग्य की वृत्ति धारण करो। अब ये अभ्यास करो, भगवान ने कह दिया मुश्किल मत समझना। आप अपने बच्चों को किसी परीक्षा में पास होनी है तब घर में क्या कहते हैं, बेटा बार बार पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, आपने याद कर लिया लेसन के नहीं किया, अभ्यास करो। क्या कहते हो घर में? अभ्यास करो, यही कहते हो ना बेटा, तुम अभ्यास करो बैठ के, अच्छी तरह से पढ़ो, इसको भूलना मत। अभ्यास का मतलब बार बार इसी को दोहराओ, उसी क्रिया को बार बार करने को अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य क्या है? बहुत सरल बादशाह में ये, जब परीक्षाएं होती है तो बच्चों को आप क्या कहते हैं, टेलीविजन मत देखो, अभी एक महीना टेलीविजन तुम्हारी बंद है, तुम्हारा खेलना कूदना बंद है, कहते हो कि नहीं कहते हो? ऐसे कहते हो ना बच्चों को घर में कि भाई अभी तो तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, अभी तो टेलीविजन नहीं चलेगी एक महीना, आप तुम्हारा खेलना कूदना बंद है, बैठ के अभ्यास करो। ये वैराग्य का मतलब है, जो चीज तुमको अच्छी लगती है लेकिन उससे भी अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए उसको छोड़ना है। तुमको लगता तो अच्छा है लेकिन तुमको महान कोई चीज प्राप्त करनी है, तुमको बड़ा आदमी बनना है, इसलिए तुच्छ चीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इसको वैराग्य कहते हैं साधारण भाषा में। तो ऐसे अभ्यास किस चीज का करना है? जो चीज हमेशा याद रहे। परीक्षा तो संसार के अंदर, स्कूल में पढ़ोगे तो साल के बाद हरेक को देनी पड़ती है, लेकिन एक परीक्षा सबको देनी पड़ती है और उस परीक्षा का नाम मृत्यु है, जिसके लिए न कोई तिथि है, मौत न पूछे तिथि न पूछे मूर्त वार, न मूर्त निकलता है। शादी का तो मूर्त निकालता है, घर में जाने का मूर्त निकलता है, मौत का कोई मूर्त नहीं निकालता है। मौत की तिथि और वार भी नहीं है, उसका कभी परीक्षा होगी, उसका कभी कोई पेपर भी आउट नहीं होता है, लेकिन आता सबको, ये परीक्षा देनी सबको है। उस समय जब ये परीक्षा होगी तब जिसने अभ्यास किया होगा, उस वक्त जिसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा और इस संसार के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। उस बड़े एक के लिए अभ्यास सारा जीवन करना है कि अंत समय में मुख से क्या, भगवान क्या कहते हैं, अंत मति सो गति। अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करना उसके लिए जरूरी है। रोज जब नेम से भगवान का नाम जपने का अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन का रोज, जैसे आप बच्चों को पहाड़े कैसे याद हुए, तेरे का तेरह का पहाड़ा कितना मुश्किल है, तेरह सत्य 91, कितना जल्दी आ गया आपको, क्यों, आपने इसको 50,000 बार याद किया है, मालूम है 50,000 बार आपने दोहराया है, तो रात को सोए हुए आपसे पूछेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि अभ्यास किया है। तो ऐसे भगवान के नाम का अभ्यास करो, ऐसे चलते चलते पांव थोड़ा सा लड़खड़ाए, हरे राम, ऐसे मुख से निकल जाए ओम, कहीं चोट लग जाए, कभी देख लो कि ऐसे अचानक कोई आपत्ति आती है तब भगवान का नाम मुख से निकलता है कि नहीं, उस वक्त नहीं निकलता है, हमने कई बार देखा नहीं निकलता है, फिर कहते अरे सारी जिंदगी की मेहनत पानी में चली जाएगी, अब नहीं निकला तो कब काम आएगा, इसलिए अभ्यास करो, अभ्यास करो और वैराग्य करो। किस चीज का, जो चीजें संसार में, अब वैराग्य हम जब कहते हैं, ये लाल बत्ती जो लगी हुई है रोड के ऊपर, ये आपका टाइम खराब करने के लिए सरकार ने लगाई है क्या, कि आपका एक्सीडेंट ना हो इसलिए लगाई है, आपसे दुश्मनी नहीं है सरकार की, लेकिन आपका टाइम लाल बत्ती के ऊपर खराब होता है ना, लेकिन क्यों का लगाई, ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। ऐसे कुछ चीजों को संसार में छोड़ना है। डॉक्टर क्या बोलता है, मेरे को शुगर की बीमारी है, मैं जाके बोलो डॉक्टर को, बोलेगा दवाई तो आपको देता हूं लेकिन शुगर नहीं खानी है, अभी मिठाई तो बहुत अच्छी लगी है खाने को, लेकिन मना किया मत खाओ, क्योंकि तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, तुमको नहीं खानी है। तो भगवान के रास्ते पे चलने वालों को भी भगवान का नाम दवाई के रूप में दिया जाता है, और कुछ चीजों को छोड़ना परहेज के रूप में बताया जाता है। अगर बीमारी से बचना है तो दवाई तो खानी है, लेकिन परहेज भी करनी है, और परहेज कोई अपनी मर्जी से नहीं बताई गई है। श्रीमद् भागवत में जहां कलयुग परीक्षित महाराज से मिला, तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को जीवन दान तो दिया जब शरण में आया, लेकिन उसने स्थान मांगा रहने के लिए तो चार जगहें दी, चार जगहें दी, धर्म के चार स्तंभ है, धर्म चार खंभों के ऊपर खड़ा है, सत्य धर्म का एक स्तंभ है दया तपस्या और पवित्रता, ये चार धर्म के स्तंभ है सत्य दया तपस्या और पवित्रता, और कलयुग को चार स्थान दिए हैं जो चार धर्म के इन खंभों को उखाड़ के फेंक देता है। सत्य कब जाता है, जब आदमी जुआ करता है, दया कब जाती है, जब पशु की हत्या करके मांस को खाने के लिए जीभा लपटपाती है तो आदमी के अंदर से दया चली जाती है, और तप कब जाता है, जब नशे में लिप्त होकर आदमी व्यसन में जाता है तो तप चला जाता है, और पर स्त्री पर पुरुष बगैर विवाह के छंबद रखते हैं तो पवित्रता चली जाती है। तो ये चार स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए, वहां जाके रहो जहां शराब या नशा होता है, वहां जाके रहो जहां पशु की हत्या होती है, मांसाहार होता है, वहां जाके रहो जहां जुआ होती है, वहां जाके रहो जहां स्त्री पुरुष अविवाहित जीवन में भोग संभोग करते हैं, ऐसे स्थान पे कलयुग को रहने का स्थान दिया। ये चार स्थान जहां कलयुग रहता है, जो इनसे बचने का प्रयास करेगा, ये वैराग का अर्थ है। वैराग का अर्थ है इन चार चीजों के बचना है पहले, ये पाप के, ये धर्म के खंभों को उखाड़ के फेंकने वाले, इनसे बचने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए। ये है असल में वैराग्य, कम से कम सात्विक जीवन तो होना चाहिए। ऊपर का वैराग्य, संत महात्माओं का वैराग्य है, वो तो बहुत ऊपर का स्थान है, लेकिन आम व्यक्ति को धर्म के ऊपर चलना तो चाहिए, इसलिए ये चार चीजें पहले जरूरी है, और एक भगवान के नाम का रोज अभ्यास करना जरूरी है। तो हम बात यहां से कर रहे थे कि साधु संत महात्मा सम्मेलन में आते हैं, कोई तप निष्ठ होता है, कोई योग निष्ठ होता है, कोई जप निष्ठ होता है, कोई, तो हर एक अपने अपने अनुभव से आपको कुछ बताते हैं, और किसी आदमी को कौन से साधु की कौन सा अभ्यास अच्छा लगेगा उसके जीवन में, उससे परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सम्मेलन मंगाया, क्योंकि सब जगह एक जगह से सब लोग नहीं आते हैं, बात हमने यहां से शुरू की थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग पूरा नहीं किया तो शाश्वत समय तक जाके ऊपर के लोगों में भोग करेगा, लेकिन वहां से वापस आएगा तो कहां आएगा, श्रीमताम सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। वो जब संसार में आएगा तो श्रीमतान कहते धनवाल, जिसे बात धन है, सुख है, संपत्ति है, उसके घर में जन्म। बोला कैसा धन? बोला सुचि नाम पवित्र। सुचि पहले भगवान ने बोल दिया, केवल धन नहीं बोला, सुचि नाम श्रीमदान के है। जो पवित्र धन जिसने अर्जन किया हुआ है, जिसके पास भगवान ने, तो उसको दुनिया में फिर कमाने की कोई परेशानी नहीं होगी। अपना योग जहां से छोड़ा है वहां से अपने योग को वहां शुरू करेगा। ये गौतम बुद्ध कहां पैदा हुआ? बहुत बड़े राजा के घर में। हाँ, ये पांडव कहां थे? राजकुल में पैदा हुए। ऐसा ऐसा बहुत सुंदर वातावरण उनको मिलता है जहां से वो अपनी भक्ति। और नहीं तो अथवा योगी नाम कुले भवती धीमतान, नहीं तो किसी योगी के कुल में, कौन सा योगी बोला? धीमतान, बुद्धिमान योगी के कुल में। तो कभी कभी कहते हैं महात्मा साधु तो सन्यासी है, उनका कुल कहां से आएगा? परिवार में नहीं किया, शादी नहीं किया, तो कुल कैसे होगा? अरे गुरु कुल बोलते हैं, गुरु का कुल होता है, गुरु के शिष्य, गुरु के परिवार पूरा उसका कहते हैं। तो श्रीमत योग भ्रष्ट अभिजायते, कहां जाता है? अथवा योगिनाम अपि धीमतां, योग जो योग से भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए कोई योगी ऊपर की मंजिल से आया है, उसको ध्यान का मार्ग समझ में आ जाएगा। कोई भगवान का प्रेमी भक्त भगवान के साथ हाथ लगा के लौट के आया है किसी कारण से, उसको भगवान के कीर्तन में आनंद में आया। तो सम्मेलन करने का मतलब है कि लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं, हरेक की मानसिकता अलग है, हरेक के कर्म अलग है। इसलिए सम्मेलन में आपको हर प्रकार का साधन मिल सकता है जो साधन आपको सूट करे। जैसे स्टोर में, मेडिकल स्टोर में दवाई तो सब रख दी है, लेकिन आपकी बीमारी को कौन सी दवाई काम करेगी वो तो डॉक्टर बताएगा। सभी दवाएं तो सभी रखेगा ना, स्टोर वाला एक तो नहीं रखेगा। तो सम्मेलन का मतलब है सभी साधन आपके सामने रखे जाएंगे, लेकिन आपकी बीमारी का इलाज कहां से होगा, किससे होगा, ये आपको निर्णय करना है। हाँ, ये आपको इसलिए सम्मेलन, नहीं तो एक आदमी तो हमेशा सत्संग करता रहता है अपने आश्रम में। सम्मेलन का मतलब है क्योंकि भिन्न भिन्न सब जगहों से सब लोग आए हैं, सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं है, सबका सोच एक जैसा नहीं है। इसलिए सम्मेलन में सबको मौका मिलता है कि किसको कहां कैसे अपने जीवन को संवारना है। तो अपन यहां आज के सत्संग को यहां समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हुए आपसे विनती करते हैं कि कलयुग में सबसे सरल साधन जो सब शास्त्रों ने, सब ग्रंथों ने, सब संतों ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम ही आधार है। भय नाशन दुर्मत हरण कल में हर को नाम, कलयुग में भगवान का नाम ही एक साधन। हरिहर नाम, हरिहर नाम, हरिहर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम। अरे महाराज परीक्षित की हमने कल कहा था बात करेंगे, वो बात पूरी नहीं करते हैं, एक ही शब्द कहते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा मैं राजा हूं, मेरी प्रजा कलयुग आने वाला है, इतनी बड़ी दुखित होगी। मैं था तो कलयुग को दबा के रखा था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं, कलयुग इस हमारी प्रजा को बड़ा दुखी करेगा। कलेर जना, ये कलयुग के जो लोग हैं कैसे इनका उद्धार हो महाराज बताइए, हे सुखदेव महाराज बताइए। हाँ, केन उपाय न कलेर जना, कलयुग के लोगों का उपाय क्या है कि इनके बंधन मुक्त हो जाए, ये दुख से मुक्त हो जाए। तब सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक कहा है। क्या कहा है? कलेर दोषे निधे राजन, हे महाराज कलयुग दोषों का घर है, कलयुग दोषों का घर है। निधि कहती है सागर को, कलयुग दोषों का सागर है। अरे महाराज परीक्षित का ये सागर है तो डूब जाएंगे सब, कैसे बचेंगे? तो महाराज परीक्षित मुस्कुराते हुए कहा अस्ति एको महागुण, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। हाँ बताओ कौन सा गुण है? अब महाराज कौन बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी बता रहा है। सुखदेव गोस्वामी जिसके आने के ऊपर सब महात्मा, दुनिया में जितने साधु हुए सब बैठे हुए थे। वो वशिष्ठ बैठा हुआ था, विश्वामित्र बैठा हुआ था, अंगिरा बैठा हुआ था, गौतम बैठा हुआ था, नारद बैठा हुआ था, व्यास बैठा हुआ था। नारद और व्यास को छोड़कर सब उठ के खड़े हो गए। 16 साल का बच्चा था, आते हुए देखा सब उठ के खड़े हो गए। इतना बड़ा महान था, उसको आसन दिया कि तुम बैठ के भागवत बताओ। वो सुखदेव महाराज कह रहा है, क्या कह रहा है? अस्ति एको महागुण, क्या महागुण है बताओ जरा महाराज। बोला कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत, ये सुखदेव महाराज का वचन है। कीर्तन भगवान के नाम, किसका कीर्तन? किसका? बोला कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का मुक्त संग दुनिया के बंधन से मुक्त कर देगा। बोला मुक्त करके छोड़ देगा क्या? बोला नहीं, परम व्रजेत, परम पर तक ले जाएगा, उंगली से पकड़कर भगवान के चरणों तक।
तो एक ही साधन कलयुग में क्या, कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, ये भागवत का सुखदेव महाराज का अंतिम आदेश है। और इसके बाद सुखदेव महाराज ने संपूर्ण भागवत कर दी, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का कीर्तन करने से सब पाप नाश हो जाते हैं। बरसात पड़ जाए अभी ना, तो बरसात को कोई सरकार रोक सकती है, गवर्नमेंट रोक सकती है, नहीं रोक सकती ना। तो बरसात जब कोई नहीं रोक सकता है तो कलयुग को कोई नहीं रोक सकता है, क्यों, कलयुग को कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। लेकिन आप लोग भीगने से बचना चाहो तो बहुत सरल साधन भी है ना, एक 100 रुपये का छाता तो ले सकते हो ना। बरसात तो नहीं रोक सकते हो लेकिन 100 रुपये का छाता लेके अपने को भीगने से तो बचा सकते हो ना, और छोटी सी नाव लेके डूबने से बचा सकते हो ना। तो कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन राम नाम का छाता अगर आपने पकड़ लिया, हरि नाम की नौका आपने अगर बना ली, तो कलयुग तो रहेगा लेकिन आप पार हो जाओगे। अब हमारा अद्वैत हरि को विनती करते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन कराए, जो कलयुग का युग धर्म है। नाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है, ये महायज्ञ है कलयुग में, आइए इसमें भाग लीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
हमारे आज की सभा में